तो कहीं एक कर्पूर नाम का कोई एक बड़ा भारी बिजनेस वहां से पंजाब से आ रहा था मथुरा में बेचने के लिए सामान, और उस पर काफी सामान था। उसकी नौका यही पास में लग गई, ठाकुर जी ने लगा दिया। अब वो निकले नहीं, अब वो सनातन गोस्वामी के पास में आया और बोलने लगा, ये प्रभु हमारी नौका निकलवा दीजिए, आपको कुछ प्रणाम ही दूंगा, कभी हमको जरूरत नहीं है, जो जैसे कुछ मदना से कहो। तो उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की और प्रार्थना करते ही झट नौका निकल गई, मथुरा में गया। जो सोचा था उससे 10 गुना लाभ हुआ और उसको बहुत रुपया आमदनी हुआ। आमदनी होने के बाद में आकर के सनातन गोस्वामी के चरणों में पढ़ करके यहीं पर विशाल मंदिर बनाया और वहीं पर ठाकुर जी को मदन मोहन जी को बधाया। चैतन्य महाप्रभु के लिए सनातन गोस्वामी ने एक वहां पर और भी मंदिर बनाया, जो अभी तक सुनना महाप्रभु जी पीछे से आ नहीं पाए। महाप्रभु जी ने कहा था हम आएंगे, हम तुम्हारे पास में रहेंगे, तो वो सनातन गोस्वामी जी ने इनको बनाया। पीछे से मुसलमानों के भय से इस मंदिर के ठाकुर जी जो मदन मोहन थे वो चले गए जयपुर में। तो यहाँ पर ब्राह्मणों का रखा, हजारों गायों को रख दिया, जमींदारी ठाकुर जी के लिए कर दी, पूरी व्यवस्था जब हो गई ठाकुर जी की। वृंदावन में सबसे पहला यही मंदिर है, सबसे पहला, इससे पहला और कोई मंदिर नहीं है। यही सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु जी के कृपा आदेश से मदन मोहन जी को प्रकाश किया। रूप गोस्वामी ने उधर में पीछे से गोविंद जी का, मधु पंडित जी ने गोपीनाथ जी का, इसके बाद में हमारे गोस्वामी होंगे। और उसके बाद में तब ये बंक बिहारी जी, राधा बल्लभ जी, तो बहुत उनसे बहुत पीछे से ये सब प्रकाशित हुए। मूल मंदिर पहले ये तीन थे, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, पीछे से राधा दामोदर जी, फिर राधा गोकुलानंद जी, श्याम सुंदर जी, ये सब मंदिर थे। अब लोग ऐश्वर्य जहाँ देखते हैं तहाँ जाते हैं, वहां पर ऐश्वर्य कम हो गया, पुजारियों ने ठाकुर जी का सब प्रणामी सब अपने आप हड़पना आरम्भ कर दिया, इसलिए वो सब उनकी पूजा ठीक नहीं रही, इसलिए लोग सब अब राधा बिहारी जी में अब जाने लगे। मदन मोहन गोविंद जी को अब कोई जानता ही नहीं है, केवल हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं वही केवल हम लोग। इस तरह से सनातन गोस्वामी जी वृंदावन, वृंदावन का ही नहीं, यहाँ पर जितने लुप्त थे ये महाप्रभु के आदेश से सब जगह को उन्होंने प्रकाशित किया था। रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, और एक एक वन में एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात रहते थे और कभी मानते नहीं थे। और उनकी भी बहुत सी और भी कथाएं हैं। हम लोग पीछे से अपने मंदिर में बैठ करके रूप सनातन जी में हम लोग इसके ऊपर में सब बताएंगे। सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास स्वयं लिखा। सनातन गोस्वामी जी हरि भक्ति विलास लिखा और उसका टीका भी लिखा और गोपाल भट्ट जी का नाम उस पर रख दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ
संकलन किया,
संकलन किया था। पीछे से स्वयं टीका लिखा उसके लिए हरि भक्ति विलास का। बृहद भगवता में जैसा सुंदर ग्रंथ लिखा। रूप गोस्वामी जी के ये गुरु हैं और तभी गुरु होकर के भी अपने शिष्य के लिए प्रणाम करते हैं, जो महाप्रभु की कृपा तुम्हारे माध्यम से हमको कैसे मिले, उनको प्रणाम किया है बृहद भगवतामृत जी। इस तरह से सनातन गोस्वामी हमारे इसके मूल महापुरुष हैं। यहीं पर जब जगदानंद पंडित आए तो वो आप लाल कपड़े वाला कथा वहीं पर हुआ, महाबन सनातन गोस्वामी लाल कपड़ा बांध करके आए, जगदानंद प्रभु ने जलती हुई हाणी से उठा करके और उनको मारने के लिए उठे, कहा जो धन्य है, धन्य है आप, महाप्रभु के प्रति आपकी इतनी निष्ठा। सनातन गोस्वामी जी का जब उन्होंने हृदय का भाव पूछा और जब जाने तब वो लज्जित हो रहे उनके चरणों में गिर पड़े थे। ऐसे ये सनातन गोस्वामी सर्वमान्य है, इनकी कृपा के बिना भजन नहीं हो सकता है, इसलिए उनके भजन कुटी और समाधि नहीं हम लोग वे कम ही है। This is the place of श्री मंदिर में आए जो वहाँ पर हमने कथा कही, जो हमने वहाँ पर कथा कही थी सनातन गोस्वामी जी के संबंध में, वहीं पर भजन करते थे। और मथुरा में जब गए तो उन्होंने मदन गोपाल जी को ब्राह्मणी के घर में देखा, लोग कहते हैं कि वो विग्रह अद्वैताचार्य जी को सबसे पहले यहाँ पर वृंदावन में मिली और इन्होंने लेकर के गोकुल में उनकी पूजा की, गोकुल में रख दिए, पीछे से गोकुल से ये फिर यहाँ पर आए थे। और ऐसे भी है कि जैसे हमने कहा कि वही विग्रह अद्वैताचार्य द्वारा सेवित, यहाँ पर अभी हम जाएंगे सीतानाथ भट्ट अद्वैत भट्ट कहलाता है, वहाँ से फिर मथुरा में वो चली गई। कोई सनातन गोस्वामी वो ब्राह्मणी के घर में मदन मोहन को देखा, मदन मोहन को देख करके इनकी सेवा के लिए लुप्त हो गए, जब मेरी ये सेवा कब करेगा। सनातन गोस्वामी जी ने कहा मैं तुम्हारी क्या सेवा करूंगा, यदि चलना है तो हमारे पीछे पीछे चलो। तो वो पीछे पीछे यहाँ पर आए और जहाँ पर उनका वो स्थान देखा, हम लोग भजन कुटी में गए थे वहाँ पर रखा, पीछे से बहुत विशाल रूप में उनका मंदिर बना और उसमें मदन मोहन जी को रखा गया। जब सब प्रकार से मदन मोहन की सेवा समृद्ध हो गई तो ठाकुर जी को प्रणाम करके और उन लोगों को सौंप करके ये वंश उन्हीं के वंश के ऊपर में उन्होंने सौंप दिया, जो आज भी उनकी सेवा कर रहे हैं। ये लोग गोस्वामी लोग कहलाते हैं, इनको ही सेवा छोड़ दिया। तो उसी समय से थोड़ा सा बोल दो, तो वही उसी समय से सेवा चलने लगी। सनातन गोस्वामी उनको प्रणाम करके अपना एक एक पेड़ के नीचे एक एक वन में एक एक रात निवास करते हुए पहले जैसा वो भजन करने लगे विप्रलंब भाव से। कुछ दिन के बाद में ये अप्रकट हो गए, रूप गोस्वामी अप्रकट हो गए, हमारे जीव गोस्वामी भी अप्रकट हो गए। धीरे 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 प्राय उसके 250 वर्ष बाद में औरंगजेब का समय आया। ये बात है अकबर के समय की, और उसके बाद में अकबर हुआ, फिर जहांगीर हुआ, फिर शाहजहां हुआ, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब हुआ। उसने हिंदुओं के विरुद्ध लग करके जितने उनके मंदिर थे उन सबको तोड़वाया फुड़वाया, उनकी मूर्तियों को भी तोड़वाने की चेष्टा की। उसने रूप गोस्वामी का मंदिर, ये मदन मोहन जी का मंदिर, मथुरा में केशव जी का मंदिर, गोवर्धन में हरदेव जी का मंदिर, ये सबको तोड़वा करके उसको कहीं कहीं मस्जिद के रूप में और कहीं किसी रूप में स्थापित किया। उसी समय में शिव विग्रह लोग गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा दामोदर जी राधा बंकिम जी और जितने मोहन सभी लोग यहाँ से, वृंदा जी भी, सब लोग यहाँ से ठाकुर जी को लेकर के और वहाँ का राजा जयपुर का राजा उनको लेकर के वहाँ पर ले जाने के लिए आया। चलते चलते पहला पड़ाव उसका हुआ राधा कुंड में, दूसरा पड़ाव हुआ काम्य वन में, तीसरा पड़ाव हुआ अलवर के पास में कहीं, और इसके बाद में फिर वो ले गया जयपुर में। जयपुर में सब विग्रहों को रखा, रखने के बाद में उनकी पूजा होती रही। गोविंद जी का उनके राजभवन के अंदर में शिव मंदिर बना और राज सेवा उनको पाने लगे। गोपीनाथ जी को भी कोई पासी में रखा गया, मदन मोहन जी को भी रखा गया। कुछ दिन में उनकी एक लड़की थी बड़ी आराधना करने वाली, बड़ी भक्त थी, उसने पिताजी से कहा कि पिताजी हमारी शादी तो कर रहे हैं किंतु ज्योतक रूप में उपहार के रूप में हमको मदन मोहन को देना पड़ेगा। तो राजा ने कहा जा ठीक है, उनको मदन मोहन दे दिया। वो करौली में उनकी शादी हो गई, करौली में राजभवन के अंदर में खूब विशाल रूप में उनका मंदिर बना, उनका आज भी वहाँ पर इसी मदन मोहन जी की पूजा हो रही है। ये मदन मोहन ऐसे हैं कि उनकी इच्छा कुछ पहनने की हुई तो उनकी इच्छा कैसे होती है, यदि भक्त के हृदय में वैसी इच्छा हो तो भक्तों की इच्छा से भगवान को इच्छा होती है। रानी की इच्छा हुई कि यदि इनके कान में छेद होता और नाक में छेद होता तो नाक में लवंग, नक बेसर और कानों में कुंडल में पहना देती, सुंदर सुंदर अपना जवाहरात हीरा का। रात में स्वप्न हुआ जो तुम दुख मत करो, जाओ देखो हमारी यशोदा मैया ने नाक छिदवा दिया था और कान अभी तक वो पड़ा हुआ है, तुम उसी में पहना दो। राजा को लेकर के गई, देखा सचमुच में नाक में छेद है और कान में छेद है। उसने अपना कुंडल सोने का जवाहरातों से भरा पड़ा और नख बेसर मणियों से और हीरा से जड़ित था, उसने अपने हाथों से लेकर के उनको पहना दिया। ये सब चीजें ये दिख पड़ती हैं। ये ठाकुर जी देखो ऐसे हैं कि वहाँ से चल करके मथुरा से यहाँ पर खुद आए और बोलते हैं कि आपने भक्त से तुमको नमक नहीं मिलता है जो एक रोटी के साथ में मैं नमक मुझको दे सको, और भक्त भी वैसा टेढ़ा है, वो कहता है कि हमारे आज पास में नमक मांगता है, कभी मक्खन और मिश्री मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, मैं कहाँ से लाऊंगा, इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था करो। ठाकुर जी भी ऐसे हैं, तो ऐसे ये सनातन गोस्वामी जी हैं, और हम लोगों को गर्व है कि आज सनातन गोस्वामी की परंपरा में हम लोग भजन करने जा रहे हैं, जिनके वशीभूति है राधा जी, गोविंद जी, मदन मोहन जी उनके वशीभूत हैं। अभी हम लोग प्रणाम करके यहाँ से चलेंगे, और यहाँ से अद्वैत वट अष्ट सखी का मंदिर दर्शन करके चलेंगे। यहाँ का नियम कुछ है, नियम यह है कि पहले वहाँ से नहीं जाने देते हैं, तीन चार मंदिर यहाँ पर गोपीनाथ जी में और मदन मोहन में पहले भेंट कुछ देते हैं, किंतु हम लोग उसी संप्रदाय के हैं, इसलिए भेंट के लिए अधिक नहीं कुछ गड़बड़ करते, किंतु हम लोग स्वयं ही इनका मान रखने के लिए परस्पर चंदा करके और उनको भेंट हम लोग जमा कर देते हैं। इसलिए आप लोग कुछ कुछ भेंट, एक रुपया दो रुपया जैसा आप लोग देना चाहें, यहाँ पर गोविंद जी के मंदिर में और गोपीनाथ जी के मंदिर में तीन में आप लोगों को देना पड़ेगा, हम लोग भी कुछ दे देंगे। इसलिए यहाँ नहीं जो प्रणामी दिए हैं वो जब दिए हैं वो कुछ हमारे ब्रह्मचारी लोगों को दे दें, और हम लोग उनको दे करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। मदन मोहन जी की सनातन गोस्वामी की जय, सनातन गोस्वामी की जय, गौ प्रमाण। अद्वैत बट, अरे बट देख छे अपना बट देख रहे हैं, अद्वैत बट ये अभी बच्चा है, बाल बट है, एक अने विराट बट वृक्ष छिलो। अद्वैताचार्य आछेन, महाप्रभु जी से कब थे उसका हम 50 वर्ष पहले, जब अद्वैताचार्य जी यहाँ आए तो बट की छाया में यहाँ पर बैठे, उस समय में कोई भी मंदिर नहीं था, सनातन गोस्वामी जी का मदन मोहन का भी नहीं था, कोई भी मंदिर नहीं था, चैतन्य महाप्रभु जी से भी 50 वर्ष पहले आए थे, वन जंगल चारों तरफ में उसी पट के वृक्ष की छाया में जमुना के किनारे, और प्राचीन वृंदावन इसी को कहते हैं, इधर ही में पल है प्राचीन वृंदावन था, और वो बढ़ते बढ़ते उधर चला गया, फिर उधर से अब रमन रेती में अब आ गया वो, तो ये काल के प्रभाव से होता है। जब यहाँ आए तो यहीं पर मदन मोहन जी की पूजा यहीं पर होती थी, उन्होंने इसी जगह से वो प्राप्त किया मदन मोहन जी का, और यहीं से लेकर के फिर वो चले गए गोकुल में, कुछ दिन रहे महाबन में, महाबन में वहाँ पर पूजा करते रहे, सुनते हैं कि वहीं से ये विग्रह फिर से सनातन गोस्वामी को मिली, और यहाँ पर उन्होंने उस मंदिर में पधराया था। इसलिए अद्वैताचार्य जी यहाँ नित्यानंद प्रभु जी से भी पहले यहाँ आकर के चारों तरफ में भ्रमण किया था, 12 वनों में, 12 उपवनों में, और 12 और सब वनों में ये रह करके सब भ्रमण किया, वृंदावन लोक का उद्धार किया, और यहाँ कुछ दिन जमुना के किनारे यहीं पर पास में बहती थी उसी के निकट में रह करके भजन किया था। ये सब प्राचीन स्थलियाँ हैं, प्राचीन वृंदावन का इधर ही ये सब रूप है। हम नित्यानंद प्रभु उनको अद्वैताचार्य, कोई को नित्यानंद बट भी कहते हैं, नित्यानंद भी उसी के बट के नीचे आकर के, क्योंकि और तो दूसरा तो कुछ था नहीं, पीछे से चैतन्य महाप्रभु आए तो वो इमली तला में रहे और वहाँ से यहाँ पर आते थे, इस तरह से उसके बाद में फिर नया वृंदावन बसा और ये सब मंदिर इत्यादि सब बुले हुए और वृंदावन लुप्त उसका उद्धार। बोलो अद्वैताचार्य की, अद्वैत भट्ट की जय, मदन मोहन जी की बहुत प्रेमा। अभी केसी घाट को पार करके अभी आएंगे, केसी घाट के अंतर्गत में है, केसी घाट के पास ही में रास स्थली थी, वहीं पर रास हुआ था। रूप गोस्वामी ने कहा है खबरदार वृंदावन में मत आना, और वृंदावन में कभी मत जाना, यदि स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति को भोग करने की लालसा हो, आनंद से जीवन यदि बिताना है तो मत वृंदावन में आओ, और वृंदावन में भी जाना तो खबरदार केसी घाट में मत जाना, और किसी प्रकार से केसी घाट में भी यदि चले जाना तो पासी में गोविंद जी का मंदिर है, उसमें तो एकदम मत जाना, झांकना मत उधर में, क्यों वहां पर गोविंद जी त्रिभंग ललित थाम में खड़े हैं, पास में बाएं तरफ में राधा जी हैं,
और मुस्कुरा करके बंसी बजा करके यदि थोड़ी सी आंख की कनखी से देख लेंगे फिर घर में नहीं लौटना होगा। इसलिए खबरदार वृंदावन में जाकर मत जाना और केसी घाट में मत जाना। इसलिए यदि घर में रह करके सुखों का तरंग यदि भोगना है तो इधर में मत झांको, परिक्रमा मत करो और यहीं से लौट जाओ। और जो ये चाहते हैं जो फिर घर नहीं जाना है तब तो भाई चलो गोविंद जी का हम लोग दर्शन करें और परिक्रमा करें। काशी में यहाँ पर केशी दैत्य था, रास इत्यादि समाप्त हो गया है। मथुरा जी से मथुरा में जाने के पहले केशी ने यहाँ पर उत्पात किया और ब्रजवासियों को तंग करता था यहीं पर। एक दिन की बात है कि केशी दैत्य ने देखा ये कृष्ण यहाँ गोचारण करने के लिए आए हुए हैं सखाओं के साथ में। कंस ने कह दिया था जो हमारा शत्रु है वो बड़े 12.5-13 वर्ष का होगा और सांवला रंग का होगा, माथे पर मुकुट होगा मोर का, हाथों में बंसी होगी, बहुत ही अजीब अलबेला सुंदर है और पीताम्बर धारण किए हुआ होगा, इसलिए उसी को मारना तुम। वो ठीक निशाना बना करके कृष्ण को खोजता हुआ यहीं पर आया। इतने में मधुमंगल ने कृष्ण से कहा उससे पहले ये देखो तुमको ब्रज में कोई नहीं पूछता, तुम्हारी ये जो बंसी है और मोर मुकुट है और पीताम्बर है यदि हमको दे दो तो तुमको ब्रज में कोई पूछेगा नहीं, हम ही को सब पूछेंगे, और नहीं तो विश्वास यदि है तो हमको दे दो तुम। कृष्ण ने कहा अच्छा ले लो। उन्होंने अपना मोर मुकुट और पीताम्बर और बंसी सब उनको देकर के अपने हाथों से वनमाला इत्यादि पहना दिया और वो ठीक वैसे बन गए। इतने में केशी आया हिलहिलाता हुआ और खोज रहा था कृष्ण को, देखा अरे यही तो कृष्ण है। ये मधुमंगल को देखते ही उसने पीछे से दो पिछाड़ी लात मारी किंतु लात भगवान की इच्छा से लगी नहीं, वो तो हवा से ही उड़ गया और कहां उसका मुकुट गिरा कहां बंसी बनी गिरी और वो कृष्ण के पास में दौड़ करके आया, बोला हमारी रक्षा करो, अब हमको ये तुम्हारी बंसी और इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद में कृष्ण को उसने जल्दी से लौटाया और उसने देखा जिसे अच्छा यहीं पर ये खड़ा है, बस फिर से उसने आक्रमण किया। आक्रमण करते ही उसके दोनों पिछले पैर उसने पकड़ करके और उसको उखाड़ करके ऐसे घुमा दिया, बस प्राण निकल गए। उसमें ऐसा भी है उसको जब कृष्ण को चबाने के लिए गिलने के लिए आया तो कृष्ण ने उसके अपने हाथ को उसके मुख में घुसा दिया और वो वज्र की तरफ में हो गया और एकदम अंगारे की तरफ में लाल एकदम गर्म हो गया। अब वो अब कृष्ण के हाथ को अपने मुख से न तो बाहर करता है न भीतर हो सकता, अंत में उसके प्राण वहीं पर निकल गए। वो केशी का वैद्य का वो स्थान ये है ने? और ये पासी में ये सब जो देख रहे हैं रासस्थली है, कृष्ण का रास यही हुआ और यही से बंसी बट आरंभ हो जाता है। कोटि कोटि गोपियां, कोई एक छोटा सा तो स्थान होगा नहीं, जमुना के उपवन में यहीं पर रासस्थली थी और यहीं पर रास हुआ, राधा जी को मान हुआ और राधा जी पहले रास से निकल गई, कृष्ण उसके पीछे पीछे वो भी राधा जी को ढूंढते हुए चले गए, फिर ये और सब लीलाए हैं। तो ये रासस्थली भी है, हम वहाँ पर बंसी बट के किनारे जाएंगे, वहाँ से हम प्रणाम करके और यहाँ पर केसी घाट को प्रणाम करके हम लोग परिक्रमा में यथासंभव आगे बढ़ेंगे। यहीं से मानसरोवर का मंदिर भी देखा जा रहा है, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बद्री के पेड़ है, सब जगह बद्री के पेड़ है, बद्री माने पेड़ के पेड़ है। हमारे सुखदेव गोस्वामी जी कहाँ रहते थे या व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कहाँ की? बद्रिकाश्रम में की। बद्रिकाश्रम कहाँ है? यदि हिमालय वाला बद्री नारायण वाला बद्री का आश्रम होगा तो वहां पर तो रूखा सूखा है, वहां पर आकर के इतना सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना कभी भी संभव पर नहीं है। वो तो ब्रज रसिक रसिक जो होगा, वृंदावन की जो रसमयी उपासना किया होगा, उसका फल ये निगम कल्प तरोर गलितंग फलम सुखम खाद अमृत द्रव संयुतम ये तो यहाँ पर जरूर होना चाहिए। बिना ब्रजवास में ब्रास किए किसी को भी श्रीमद् भागवत जैसा अनुपम ग्रंथ कभी भी स्फूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए व्यास जी का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, जहाँ पर कृष्ण गंगा घाट है, वहीं से पार आने पर वृंदावन और उधर में मथुरा है, तो वहाँ पर जन्म हुआ। और उन्होंने देखा, वो तो भगवान के अवतार थे, उन्होंने देखा जी हमारे अंशी के अंशी के अंशी कृष्णचंद्र यहाँ पर वृंदावन में लीलाएं करेंगे, इसलिए वहां से आकर के वृंदावन में इसी बद्री वन में थे। बेर के पेड़ के बेर खाते थे, जीवन निर्वाह करते थे और यहीं पर आराधना करते थे। विशेष करके उनकी आराधना का भाव था राधा जी। राधा जी के बिना भाव के ये सब लीलाएं स्फूर्ति नहीं हो सकती हैं। इसलिए बहुत दिनों तक यहाँ पर रह करके आराधना की और फल स्वरूप में उन्होंने को भागवत यहीं पर बैठ करके लिखा, यहीं पर सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। यहीं के वन में वो भटक रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी, और ब्रह्मवाद की तरफ में जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी। कहते हैं कि निर्गुण अपि परिनिष्ठिते, मैं पहले निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था, किंतु सुखदेव गोस्वामी हमारे व्यास जी हमारे गुरु जी ने हमको जबरदस्ती करके यहीं पर भागवत पढ़ाया और तब मेरा मन चित्त लग गया कृष्ण की भक्ति में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी को यहीं पर वन से लगा करके और श्रीमद् भागवत का पाठ कराया, इसलिए ये स्थान बद्री वन यहीं का है। इसलिए तब से ये बद्री के पेड़ बेर के पेड़ यहाँ पर होते हैं, भीतर में सब यहाँ पर जमुना के किनारे तक चारों तरफ में बद्री के पेड़ हैं। इसलिए बद्री वन असल यही है, इसी का प्रकाश वहाँ पर है। बद्रिकाश्रम में वो छोटी छोटी लाल बेरें होती हैं, खट्टी और मीठी, और वो होती हैं वो बेर सब बहुत कम होती हैं। पीछे से व्यास जी ने वहाँ पर तपस्या की। इस तरह से ये बद्री वन है, यहाँ पर हम लोग प्रणाम करके व्यास जी के स्थान को और तब फिर यहीं से वृंदावन की परिक्रमा के लिए हम लोग मुड़ रहे हैं। बोलो व्यास देव की, सुखदेव गोस्वामी की जय, बद्री वन की जय, बद्रिकाश्रम की जय, भागवत स्थली की जय, गौ प्रमाण।
गोरे दाऊ जी का मंदिर है। एक समय श्रीमती जी और कृष्ण में बहुत दिनों तक भेंट नहीं हुई, हम फेंक देंगे उठा, भेंट नहीं हुई। कृष्ण भी उनसे मिलने के लिए उत्कंठित हैं, राधा जी भी उनसे मिलने के लिए उत्कंठित हैं, किंतु किसी तरह से भेंट नहीं हो रही। श्रीमती जी की सास और ननद जटिला और कुटिला बड़ी जोर से पहरा दे रही हैं, किसी तरह से मिलने नहीं देना है। राधा जी ने सखियों के सहित कुछ विचार परामर्श किया और वो गोरे दाऊ जी बन गई। दाऊ जी का रंग भी गोरा था और ये भी गोरी थी, इसलिए दाऊ जी का वेश बनाया, किंतु एक चीज जल्दीबाजी में भूल गई। वो क्या भूल गई? चोटी, उसको छिपाना भूल गई। चोटी लंबी झोटी, यहाँ पर चोटी है ना, देख रही हैं, उनका चोटी है। दाऊ जी का वेश बन गया, सब ठीक हो गया। जब कृष्ण के समीप में पहुंची और उनसे बातें करने लगी और ठीक बलदेव जी के स्वर में ही बातें करने लगी, पहले कृष्ण नहीं समझा, किंतु उनकी बेणी देखा के कहा जी दाऊ जी को बेणी कहाँ से आएगी, तो वो समझ गए कि ये दाऊ जी नहीं है, दाऊ जी के बेस में कोई और है, ये गौरी जी हैं। तो बड़े प्रसन्न होकर के उनसे मिले, वो स्थान ये है, और इसलिए तब से ये गोरे दाऊ जी वो महाराज बन गई हैं, इसलिए उनका ये मंदिर है, विशेष विशेष लीलाएं हैं। बोलो गोरे दाऊ जी जी की बहुत प्रमाण
कले
स्टार्टिंग 25th नवंबर परिक्रमा
রাধা গোবিন্দ গোবিন্দ গোপীরা সঙ্গে মারা শিলা করেছেন, এক এক গোপী এক এক কৃষ্ণ রাস করতে করতে রাধা রানী ক্লান হয়ে গেছে, সকেত হয়ে গেছে, গোবিন্দ বসে রাধা রানীকে চরণ সেবা করছে, পাঠিচ্ছে। সেবা করলেই মন্দিরকে নাম বলা যায় সেবা কুঞ্জ বন, আমরা ব্রজবাসীরা বলে কি সেবা কুঞ্জ বন, আপনারা বাঙালিরা বলে কি নিকুঞ্জ বন, ঘরে যে গান করে নিবৃত্তি নিকুঞ্জ বন, কবে হবে দর্শন, কবে দিবি রোজা বলি, কবে হবে মম শীতল পাড়ে সেই নিকুঞ্জ বন। এই বনকে রাত্রি সময় নিয়ম, কেউ জীব জন্তু পশু পাখি মোর বাঁদর কেউ থাকে না, যারা কেউ লুকে ঝুঁকে থাকে যায় সকালে তারা মৃত্যু হয়, মরে যায়, পাগল হয়ে যায়, বোকা হয়ে যায়। এই বাঁদর আপনারা দেখেছেন সাড়ে ৬টার সময় শয়ন আরতি হয়, শয়ন আরতি পরে সমস্ত বাঁদর নিজেরাই বাইর হয়ে কই লুকে ছুকে থাকে না। এখন দেখবেন কাপড়ে সাজে না, সিংহাসন উপরে একে সন্ধ্যায় ৪টার সময় আমরা ছড়িয়ে দেয়, এইদিকে নিত্যপ্রীতি আমরা ফুল সহিয়া দেয়, দেখে আপনায় বাংলায় বলে বাসুসিজ্জা, আমরা ব্রজবাসীরা বলে ফুল সিজ্জা, এর উপরে আমরা লালু দাঁতন পান মালা লুটি জল সবাই জিনিস দিকে রাখে, আর তালা চাবি বন্ধ করে আমরা ঘর চলে যাই। সকালে ৫:৩০টার সময় এইদিকে মঙ্গলা আরতি হয়, এইদিকে মঙ্গলা নিয়ম বাধা আছে, মঙ্গলা আরতিকে সকালে এইদিকে সিজ্জা দর্শন ও ফুল সিজ্জা দর্শন হয়, ওকে এইদিকে চিহ্নি দেখতে পায়, লালু ভাঙা দাঁতন কাটা ঘটি জল নাই, আর ফুলে সিজ্জা আপনাদের এরকম করে পায়, যেরকম ঘর উপরে কেউ মানুষ ঘুম করে চলে গেছে। এতেই মহাপ্রভু বলেছেন কাজ্যাবতী নেত্র লীলা করেন যোগলায়, আর কোন কোন ভাগ্যবান দেখবারই পায়, আসে তো রাধা রানী মঙ্গলা আরতিকে দর্শন করতে পারে, যে সবাই দেখতে পারে। কারো মনে ভাবনা হয় আমি নিজের নাম করে রাধা রানী বাসুসিজ্জা দিব, তারা নাম গোত্র লেখা যায়, ওর নাম করে পুজো হয়, ফুল সহ্যা দিয়ে ৩১ টাকা খরচা লাগে, ভোগ সহ্যা কেমন সমস্ত ১০০। কারো মন হয় ফেলাতে দিবে, ফেলবে নাই, ফেললে অপরাধে পড়ে। বলো রাধা রানী কি, রাধা রানী
ये सेवा कुंज है, सेवा कुंज माने सब जगह में कृष्ण की सेवा होती है, सब लोग सेवा करते हैं, गोपी इत्यादि सभी, किंतु यही एक स्थान है जहाँ पर कि कृष्णचंद्र भी उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने बतलाया कि रास में क्लांत हो जाने के बाद में राधा जी यहाँ पर बैठ गई, कृष्ण पासी में श्रृंगार किया था, रास हुई थी बंसी डट में, और वहाँ से राधा जी मन कर लिया, श्रृंगार भट में कृष्ण ने उनका श्रृंगार किया, श्रृंगार करने के बाद में यहाँ आने पर राधा जी बोली ये मैं चल नहीं सकती, मैं थक गई हूँ, तो वहीं पर उनको मनाया और उनके मान का प्रसादन किया। इसके बाद में रास होने पर उनको प्यास लगी ललिता जी को, तो प्यास बुझाने के लिए बंसी से उन्होंने थोड़ा सा खोद दिया, तो ये सुंदर कुंड प्रकाशित हुआ। सब गोपियों ने बड़े प्रेम से यहाँ पर पानी पिया और ललिता जी के कहने से ही हुआ था, इसलिए इसका नाम हो गया ललिता जी। ललिता जी बड़ी उद्धत स्वभाव की हैं, इसलिए उद्धत हैं कि कृष्ण की और राधा जी की अपनी प्राणों कोटि सब कुछ उनके चरणों में न्योछावर कर दिया है, इसलिए कृष्ण और राधा और सब लोग इनके वशीभूत हैं। यदि कोई ब्रज में रहकर और उनसे प्रार्थना करता है या प्रार्थना नहीं करे भी, जब मैं राधिका जी की नित्य किंकरी होनी चाहती हूँ, तो साथ ही साथ में ललिता जी इसकी व्यवस्था करती हैं और उसकी इस शिक्षा को पूर्ण कर देती हैं। जरूरत होने पर इतनी ये प्रगल्भा है कि कभी राधा जी को भी डांट देती हैं और कभी कृष्ण को भी फटकार देती हैं, ऐसे ये प्रेम से पगी हुई हैं। यदि किसी को ब्रज में रहने की इच्छा हो, राधा जी की किंकरी होना चाहता हो, तो ललिता जी के शरणागत होने से ही वो इस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। एक राजगोवर्धन है, एक यमुना जी भी हैं, ब्रजभूमि भी है, वृंदाव जी हैं, किंतु सबसे अधिक शक्ति रखने वाली ये ललिता जी है। इसलिए राधा कृष्ण की सेवा करने वालों में वैसे यदि भक्ति की जरूरत हो, कामानुगा विशेष करके, तो ललिता जी का शरणागत होना चाहिए। ये ललिता जी उसकी इच्छा पूर्ण कर देती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। हे ललिता जी, हमारी अभिलाषा को आप पूर्ण करें। बोलो ललिता कुंड की जय, ललिता देवी की जय, बहुत प्रणाम।
कृष्ण वेरी ब्यूटीफुल कुंज इज देयर, बहुत सुंदर ये सब कुंज थे। और यहाँ पर श्रीमती राधिका जी ने सब सखियों के लिए कृष्ण का मिलन कराया। यहाँ पर ऐसे ये सब कुंज हैं, ये कुंज भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं और अभी भी कृष्ण लीलाएं करते हैं। कोई कोई साधक यहाँ पर रहने की चेष्टा करता है शाम को देखने के लिए, तो सुनते हैं ये मर जाते हैं। ऐसे दो चार अभी हाल में भी ऐसी बातें हुई हैं, तो मर क्यों जाते हैं? Those who want to live here in the night to see the Krishna pastime, they become dead. Why become dead? क्यों वो हो जाते हैं? एक तो उसको दर्शन करने की योग्यता नहीं है। जब तक संसार में हमारी आसक्ति है, विषय इसमें है, और जैसे रागानुगा भक्ति कहा ना, रागात्मिका वैसी नहीं हो जाए, तब तक दर्शन का अधिकारी नहीं है। तो मान लिया कि यदि वो दर्शन भी कर लिया, तो दर्शन करने के साथ यह शरीर छूट जाएगा और आत्मा से उस लीला में प्रवेश करेगा, अथवा उसका देहांत हो जाएगा, फिर साधक रूप में यहाँ पर कहीं जन्म होगा, फिर भक्तों का संग होगा, तब फिर आगे जाएगा। If anyone tries to live here in the night to see the pastimes of Krishna, if he sees anything,
tree tala, tamarind tree, you are seeing now it is dry,
disappear.
We have seen it when it was so green. Now this tamarind tree is in a prakat lila. हम लोग जहाँ पर आए हैं, ये स्थान इमली तला कहलाता है। यहीं पर कृष्णचंद्र जी बैठे थे। Here Krishna has taken, he has rested here. यहाँ पर कृष्णचंद्र जी ने विश्राम किया 5000 वर्ष पहले। यहाँ पर सुंदर इमली का पेड़ था, जिसको हम लोगों ने भी देखा था।
2 साल हो गए,
अभी 2-3 साल हुआ ये वृक्ष अप्रकट हो गए हैं। तो 5000 वर्ष पहले इसकी छाया थी कितनी, इसमें कृष्ण यहाँ पर विश्राम किया। विश्राम
इस रूप में नहीं किया है, विरह में तप्त होकर विप्रलंब भाव में होकर के यहाँ पर विश्राम किया। रास हुआ बंसी भट्ट में जमुना के किनारे, रास टुक प्लेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना इन वेरी प्लीजेंट फॉरेस्ट वृंदावन इन उपकूल, बहुत ही सुंदर उपवन। रास होने के बाद में कुछ गोपियों को, अधिकांश गोपियों को मान हुआ और श्रीमती राधिका जी को ने उनको हुआ सौभगमत और एकमात्र राधा जी को हुआ मान। सौभाग्य का मद और गोपियों में चढ़ा, किस लिए चढ़ा? कृष्ण नित्य के समय में, रास के समय में एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण बनकर, और सभी गोपी ये समझ रही कि कृष्ण हमारे साथ ही में रास कर रहे हैं, हमारे गले में ही हाथ डाल करके और स्नेह कर रहे हैं, हमारे मुख के श्वेत बंधुओं को पोछ रहे हैं। ऑल गोपीज थॉट दैट कृष्ण इज डांसिंग ओनली विथ मी in hands and hands. They also realize that Krishna has given his hands like a flower garland in their necks. Each saw like this. And they thought that Krishna is, I am most dearest to Krishna. I am only. They are not seeing that Krishna is playing with all others. और गोपियों ने कृष्ण को समझा ये कृष्ण हमारे साथ ही में नित्य कर रहे हैं, हमारे गले में ही हाथ डाल करके झूल रहे हैं, ये नहीं देखा जैसे सबके साथ में कृष्ण हो रहे हैं। इसलिए उनको इतना आनंद हुआ और सौभाग्य के मद से भर गई कि दूसरों की उपेक्षा कर सकती थी। दिस इज मद, मद मीन्स एक तरह से अपने सौभाग्य पर ही ठला रही थी।
They are proud for their fortune.
They are so much proud for their fortune that Krishna has become only to them, only to one. This is called mother. तो सौभाग्य मद इसको कहते हैं, यदि उसका पति हजार स्त्रियों के होने पर भी जिस स्त्री को सबसे अधिक प्यार करता है तो उसको कुछ मद हो जाता है और दूसरी इसको सह नहीं सकती। इसीलिए चित्रकेतु महाराज की सब स्त्रियों ने मिलकर जिसको पुत्र हुआ था उसको विष दे दिया, वो मर गया और सब फिर झूठ मूठ को रोने लगी किंतु भीतर में आनंद उनको हो रहा। तो मद एक ऐसी चीज है अपने सौभाग्य पर, यदि उसकी पति उसको खूब प्यार करता है तो वो ऐसे ही हो। तो और गोपियों ने ऐसा ही समझा, इसलिए इनको मद हो गया। कृष्ण देखा जी अब तो रास नहीं होगा, और राधा जी को हो गया क्या? राधा जी ने देखा जी हमारे साथ में नित्य कर रहा है और दूसरों के साथ में बड़ी क्षिप्र गति के साथ में, ऐश्वर्य भाव से उन्होंने नहीं किया। कृष्ण जी हजार रूप में प्रकट नहीं हुए, एक ही कृष्ण नित्य की कला की कौशल से क्षिप्रता से सब गोपियों के पास में एक साथ ही ऐसे मालूम होता है, जैसे एक अंगार लेकर के ऐसे ऐसे करने से वो सब तो गोलाकार दिखाई देता है, किंतु गोलाकार है नहीं तो वो तो छोटी एक जगह है। ऐसे ही कृष्ण एक होकर के सब गोपियों के साथ में नाच रहे हैं। कृष्ण बीइंग वन विद सो सॉफ्ट सो फास्ट
स्पीड
ही वाज डांसिंग दैट ऑल आर थिंकिंग दैट कृष्ण इज प्लेइंग विद मी मल्ली। राधा जी ने देखा जी हमारे पास में है, दूसरों के पास में भी है, इसलिए इनको मान हो गया जी हमसे भी अधिक इनको प्यार करते हैं या बराबर करते हैं, और झूठ को बोलते हैं जी मैं तुमको सबसे अधिक प्यार करता हूं। श्रीमती राधिका थॉट दैट कृष्ण इज वेरी चीटर एंड लॉयर बिकॉज ही ऑलवेज जस्ट टू टेल दैट यू आर मोस्ट डियरेस्ट टू मी टू ईच इट। श्रीमती राधिका थिंक्स दैट कृष्ण is a very good cheater and tells that I love you most.
but I am seeing that he is loving to all. So Srimati Radhika has man and others have mada. Mad is not good. Man is good thing. So Radhika has man this. Krishna thought that now Rash will not be there. Rash ab nahi ho sakta kyunki unko mad aur abhiman ho gaya hai. इसलिए राधिका जी का मान को प्रसन्न करने के लिए कहीं निभृत अवस्था में निकट में जाएं, उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांग लेंगे और गोपियों का नशा जो मद चढ़ गया है उसको उतार देंगे. उनको जब सबके सामने में राधा जी को मैं प्यार करूंगा तो इन लोगों का मद अपने आप दूर हो जाएगा. इसलिए इस चीज को सुयोग देने के लिए साथ ही साथ में राशे अंतर्ध्यान हो गए. किंतु थोड़ी देर के बाद में गोपियों ने देखा. After some time, gopis saw that footprints of Krishna were there, prominent there. Radha Krishna ka footprint dekha. Char prakar ki gopiyon ne char prakar se dekha. Swapaksha wali ne dekha. Radha ji ka swapaksha logon ne dekha. Vipaksha wali Chandravali ki sakhiyon ne aur Chandravali ji ne dekha. तटस्थ वाली ने देखा और सुहित पक्ष वाली श्यामला इत्यादि जी ने देखा. भद्रा इत्यादि जी भी ने देखा. तो विपक्ष की जितनी सखियां हैं चंद्रावली के पक्ष की बड़ी प्रसन्न हुई जैसे ये कृष्ण का चरण मिला. उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई, सबको प्रसन्नता हुई. किंतु आगे जाने पर देखा कृष्ण के चरणों के बीच बीच में एक किशोरी का कोई पैर चिन्ह है. When they advance, they saw that in the midst of Krishna's feet there is a very Kishori's lotus feet there. Kali kaun hai, kiska ye pair hai? Radha ji ki swapaksha aur Lalita ji badi prasanna hui jaise hamare sakhi ke saath mein Krishna gaye hain. Aur vipaksha wali ko bada dukh hua, ye jis Kishori ke saath mein gaye hain hamari sakhi to yahan hai. इसलिए उनको बड़ा दुख हुआ, उनका नशा उतरने लगा. जो ये जिसका ये पैर का चिन्ह है वही सबसे बड़ी कृष्ण की आराधना करने वाली है. अने आराधितो नूनं भगवान हरिरीश्वर. भगवान की बड़ी आराधना की और भगवान की आराधना के कृपा से नारायण की भजन करने के वजह से ये लोग कृष्ण के साथ में ये गई है. इसलिए निश्चय ही इसने आराधना किसका? नारायण का. कृष्ण का नहीं, कृष्ण को वो भगवान नहीं मानती. इसलिए नारायण के भजन की कृपा से आज कृष्ण इनको साथ लेकर के गए. ये सबसे इसी ने आराधना की है, सब गोपियों को छोड़ करके गए. अब उन लोगों का जो नशा था, मद था, वो उतरने लग गया. थोड़ी देर के बाद में देखा कृष्ण का चरण कुछ दबा हुआ है और एक लड़की का किशोरी का चिन्ह नहीं. तो उन लोगों ने कहा ओ ललिता विशाखा देखकर के बड़ी प्रसन्न हुई. हमारी सखी को उन्होंने कंधे पर बैठा कर लेकर के गई और उनका हृदय टुक टुक होने लगा, फटने लगा. अरे इस सखी को तो उठा करके ले गए हैं, यहाँ तक इसकी सेवा करने लगे, हमारी सखी को तो ले नहीं गए. इसलिए बड़ी दुखी हो गई. तरह तरह की गोपियों की तरह तरह मनोभावना हो रही है. When they saw that the lotus feet of Krishna is somewhat very prominent and deeper, then they thought, Lalita Vishaka thought that he has taken my Sakhi Srimati Radhika on his shoulders or on her breast. So they become so pleased. And all other Sakhi become faint that, oh, leaving my Sakhi and only to Radhika he has gone. इसलिए उनका मान उतर गया. देर मद बिकम डाउन एंड ललिता विशाखा बिकम सो मच. आफ्टर सम टाइम उन्होंने थोड़ी देर के बाद में आगे देखा कुछ फूल गिरे हुए हैं और लताओं में फूल नहीं है ऊपर. ओ यहीं पर कृष्ण जी उनको बैठा करके और फूल चयन किया, इसलिए इस पर लताओं में फूल नहीं है. ऊपर में है कुछ, नीचे नहीं है, नीचे वाले सब उन्होंने. और देखा यहाँ पर फूल गिरे हुए हैं, राधा जी का श्रृंगार किया, वही पासी में यहीं से श्रृंगार भट्ट है. यू नो श्रृंगार भट्ट, यू हैव सीन, दिस इज द प्लेस वेयर कृष्ण डेकोरेटेड श्रीमती राधिका. सो इट इज श्रृंगार बर्ड। अब राधा जी को यहां पर प्रसन्न करने के लिए उनको ये सब किया। श्रृंगार करने के बाद में राक्षसस्थली में गई, वहां पर राधा जी बोली, देखा जो सखियां आ रही हैं, उन्होंने देखा दिस ऑ दैट कृष्ण है श्रीमती राधिका शाह दैट ऑल गोपीज हैव कम नियर अर नाउ यू विल हैव टू गो अहेड टू हाइड। कृष्ण ने सोचा जो राधा जी को कहें जैसे आप छिप जाइए कहीं, किंतु राधा जी ने देखा जो मैं इन गोपियों को छोड़ करके मैंने अन्याय किया है, ये हमारे लिए प्राण देने के लिए तैयार है, अपना घर छोड़ा सब कुछ है हमारी सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए कृष्ण का भी संग नहीं करती हैं, और उनको छोड़ करके मैं अकेले आ गई, मैंने अन्याय किया है, इसलिए गोपियां आ जाए तो अच्छा है। इसलिए उन्होंने बहाना किया कृष्ण से जो मैं थक गई, मैं नहीं चल सकती हूँ, आप जहां इच्छा है लेकर के चले। वो इसलिए इसलिए नहीं कि वो सचमुच में उनको भी अब फिर वैसा ही मद हो गया, उनको मद नहीं हुआ। इसलिए वहां पर जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी ठीक है तो हमारे कंधे पर चढ़ जाओ, और उसी समय में कृष्ण देखे जिसे गोपियां आ जाएंगी, इस डर के मारे उनको छोड़ करके चले गए। किस लिए चले गए? इसलिए कि यदि इस अवस्था में हमको गोपियों के साथ में यदि वो सब देखेंगी, राधा जी के साथ में देखेंगी, तो उनको इनके प्रति ईर्ष्या हो जाएगी, और ईर्ष्या हो जाने से गड़बड़ होकर के राशि नहीं होगा। श्रीमती राधिका टोल कृष्ण टोल दैट